आने पर हमको बड़ी शांति मिलती है। अब आपका आश्रम कितना दूर है, जिस जहाँ पर जाकर के हमको रक्षा करनी है, आपके आश्रम की रक्षा करनी है, वो आश्रम यहाँ से कितना दूर है और ये आश्रम किसका है, इसके विषय में आप हमको बताइए। तो विश्वामित्र जी कहने लगे, राम यही वो आश्रम है, यही वो सिद्ध आश्रम है, यही पर तुमको रहना है, यही पर हम लोग रहते हैं और यहाँ पर रह करके तुमको यज्ञ की रक्षा करनी है। देखो ये सिद्धाश्रम भगवान विष्णु का आश्रम है। यहाँ पर एक बार भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे। भगवान विष्णु भी तपस्या करते हो, अकेले में बैठ के तपस्या कर रहे थे। उन दिनों में महाराज बलि का शासन था और बलि के शासन में असुरों के हाथ में शासन चला गया था। बलि राजा ने धर्म के बल पर एक असुरों में बलि ऐसा हुआ हो प्रहलाद जी का पोता कि जिसने धर्म के द्वारा शासन किया था, उसने देवताओं को जीत लिया था, मरुद्गणों को जीत लिया था, इंद्रादि को सबको जीत लिया था। अतएव बलि महाराज ने बहुत बड़ा यज्ञ करके शुक्राचार्य जी से बड़े बड़े शस्त्र प्राप्त कर लिए। तब देवता लोग घबरा करके भगवान विष्णु के पास आए। इसी आश्रम में यहाँ पर भगवान विष्णु बड़े शांत भाव से विराजमान। देवताओं ने आकर के कहा कि हे भगवान, आप तो स्वयं तपस्या के फल हैं, आप ये तपस्या तो लोक संग्रह के लिए करते हैं, माने दुनिया को तपस्या में लगाने के लिए करते हैं, लेकिन इधर तो महाराज बलि है, वो यज्ञ आदि के द्वारा बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त कर चुके हैं, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए कि बलि के द्वारा आप शासन लेकर के हमको दे दे रहे, क्योंकि जहां तक बलि है वहां तक तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके साथ के जो असुर है उन असुरों के द्वारा आगे जाकर पृथ्वी पर बहुत बड़ा अनाचार अत्याचार हो सकता है, इसलिए आप बलि से ये शासन ले लीजिए। देखिए बलि को तो किसी प्रकार से कोई कष्ट होने वाला नहीं, लेकिन आप यदि ये शासन ले लेंगे तो इससे हम लोगों को और सृष्टि को बड़ा लाभ होगा। भगवान ने कहा, देवताओं बलि तो धर्मात्मा है, उससे मैं कैसे शासन लूं? देवताओं ने कहा, महाराज आप एक ब्राह्मण बनकर के जाइए, वामन ब्राह्मण बनकर के जाइए, और ब्राह्मण के साम ब्राह्मण को तो वो देने के लिए तैयार रहता ही है, आप ब्राह्मण जाकर ब्राह्मण बनकर के जाकर उससे याचना कीजिए, तब उसे सारा राज्य ले लेंगे। अच्छी बात, वामन तम गतो विष्णु कुरु कल्याण उत्तम, उससे कल्याण हो जाएगा। तो मैं वामन बनू तो किसका बेटा बनू भाई? क्या महाराज कश्यप जी बहुत विलक्षण तपस्वी है, वो अपनी पत्नी अदिति के साथ में तपस्या करते हैं, आप भी इस समय तपस्या कर रहे हैं, कितना अच्छा सुयोग है कि आप तपस्वी तो तपस्वियों के घर जन्म लीजिए, आप अदिति के यहाँ पर जन्म ले सकते हैं, वो इस समय तपस्या कर रहे हैं। देवी सहायो भगवान दिव्यम वर्ष सहस्रकम, हजारों वर्षों की तपस्या के अनुष्ठान में वो बैठे। अच्छी बात है, तो मैं उनके यहाँ कैसे जन्म लू? कहा कि महाराज अदिति के मन में एक इच्छा है, कश्यप जी के मन में भी इच्छा है कि आप हमारे बेटा बनो, तो वो आपको पुत्र बनाने की इच्छा के लिए तपस्या कर रहे हैं। आप उनके पास में जाओ, आप उनसे कहो कि कोई वरदान मांगो, तो वो आपसे आप ही को मांगेंगे, आप उनको अपने आप को दे देना, आप स्वयं उनके बेटे बन जाना। शरीरे तव पश्यामि जगत सर्वमिदम्। अच्छी बात, भगवान ने देवताओं की बात मान ली और अब भगवान अदिति और कश्यप जी के सामने प्रकट हो गए। तो तो प्रकट हुए तो भाई उस समय में अदिति ने हाथ जोड़ करके, कश्यप जी ने हाथ जोड़ करके बड़ी भगवान से प्रार्थना की। प्रार्थना करते हुए कहा कि महाराज आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, सारा जगत आप में है, आप अनादि हो, आप अनंत हो, आप अनिर्देश हो, ओह मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी पत्नी और मैं, हम दोनों आपकी शरण में हैं। राम जी ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा, वरम वर है, वरदान मांगो, वरदान मांगो, क्योंकि तुम वरदान के योग्य हो। तो कश्यप जी ने कहा कि देखिए, सब लोगों का भला हो इसलिए आप मेरे बेटा बनो, इससे बढ़कर और मुझे कोई दूसरा वरदान उचित मालूम नहीं देता है। मेरे मन में एक हार्दिक इच्छा है कि मेरे अदिति के जो बेटा है, देवता लोग, आप उनके भाई बनो, इंद्र के आप भाई बनो, ऐसी मेरे अंदर इच्छा है। तो फिर भगवान विष्णु कहा कि अच्छी बात है। तो वही भगवान विष्णु आगे जाकर के और उनके यहाँ पर पुत्र हुए थे। तो ये सिद्धाश्रम है, यहाँ पर कोई भी विचार होता है वो सिद्ध होकर के ही रहता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने यहाँ तप किया और तप करने के बाद यहीं पर उन्होंने विचार बनाया, वो विचार वामन रूप से सिद्ध हो गया था। और उसके बाद तो तुमको मालूम ही है कि वो छोटे से बालक बन करके गए थे, वहां पर तीन पैर की उन्होंने भिक्षा मांगी थी, फिर उन्होंने संपूर्ण त्रिलोकी को अपने में आक्रांत कर लिया था और सारा राज्य लेकर उन्होंने देवताओं को दे दिया था। ऐसा ये सुंदर सिद्धाश्रम है, हम सिद्धाश्रम में आ गए हैं, अब यहाँ किसी प्रकार से हम लोग जो है कष्ट नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास सब शस्त्र विद्या आ गई है और तुम मारीच और सुबाहु से हमारी रक्षा करोगे। ऐसी वो बातें करते करते आश्रम में आए। बड़ा सुंदर आश्रम था, चिड़िया चह चह कर रही थी, पक्षियों का बड़ा सुंदर कलरव हो रहा था और वहाँ पर तलैया, बहुत सुंदर तलैया, मीठा जल, शांत वातावरण, वनस्पति बड़ी प्रसन्न। सिद्धाश्रम में और भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने देखा कि विश्वामित्र जी आ गए, विश्वामित्र जी आ गए, तो सब दौड़े दौड़े आए और उन्होंने विश्वामित्र जी का स्वागत किया और दोनों राजकुमारों को आशीर्वाद दिया। और उसके बाद सब ऋषि मुनि उनको अंदर ले गए, जाकर के कुटिया में बैठ गए और वहां पर आराम किए। अब उसके बाद भगवान ने कहा, गुरुदेव समय तो यूं ही बीत जाएगा, आप अब यज्ञ की दीक्षा ले लीजिए और अब आपको जो कार्य करना है उस कार्य को अब आप आगे बढ़ाइए, आज ही आप दीक्षा ले लीजिए, यज्ञ की दीक्षा लेकर के और आप अपने यज्ञ को पूरा करवाइए, हम लोग आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए तैयार हैं। और ये सिद्धाश्रम को अब सिद्ध ही बना देना है। विश्वामित्र जी बहुत आनंदित हुए और वे अपने कुटिया में जाकर यज्ञ की दीक्षा के लिए जैसा उनको मंत्र बोलना था ध्यानस्थ होकर के वे मंत्र बोले, फिर उन्होंने जल स्पर्श किया और यज्ञ को उन्होंने चालू करने के लिए आदेश दे दिया। अब विश्वामित्र जी मौन हो गए, दोनों राजकुमार चारों तरफ रक्षा कर रहे हो सिद्धाश्रम में कि भाई अब कोई बाधा न आ जाए। रात भर उन्होंने रक्षा की, प्रातःकाल हुआ, संध्या वगैरह की और अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। उसके बाद जो है राजपुत्रों ने पूछा, भगवान श्रोतुम इच्छामि, हे महाराज, विश्वामित्र जी बैठे हुए थे, उनसे दोनों राजकुमारों ने पूछा, राम लक्ष्मण ने कहा कि हे गुरुदेव, हमने तो रात्रि भर आपके खूब पैरा लगाया, कोई राक्षस आया नहीं, कोई बाधा आई नहीं, कब बाधा आती है, किस समय आती है, जरा ये हमको बताइए। तो वहां पास के ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राम, देखो विश्वामित्र जी अब छह दिन छह रात्रि तक बोलेंगे नहीं, ये मौन रहेंगे, मौनित्वं च गमिष्यति, मौन रहेंगे। अतः आपको जो भी बात पूछनी हो हम लोगों से आपको पूछनी होगी। राम जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। फिर ऋषियों ने बताया कि देखो या रात को वे लोग आते हैं और तुम रात और दिन पहरा देते रहो। एक रात बीती, दो रात बीती, तीन बीती, चार बीती, पांच बीती, छह रात, छठी रात्रि जब बीत रही थी तब लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब तैयार हो जाओ क्योंकि ये मारीच और सुबाहु यज्ञ में बाधा डाले बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि यज्ञ को समाप्त न करने देना ये इनका लक्ष्य है। तो यज्ञ समाप्त न हो जाए और बाकी इनका काम हो जाए तो इनको भी जोर आए ऋषि मुनियों को, इसलिए अंतिम समय में ये गड़बड़ कर सकते हैं, तो सावधान रहो। तो राम जी महाराज ने ऐसी बात कही। इतने में भी भाई एक यज्ञ की वेदी थी उसमें से आग प्रकट हुई और आग प्रकट होकर के और जो है वो वहां पर जलने लगी और आकाश की तरफ देखा तो आकाश में बड़ा नाद होने लगा, हा हा और हु ही, ऐसे हुए तरह तरह की आवाजें सुनते हैं, कभी रोने की आवाज, कभी हा की आवाज, कभी हु की आवाज, कभी और आवाज, और कभी कभी आकाश से बरसात होवे और कभी गंदी चीजों की वर्षा होवे, कभी कोई राक्षस दिखाई दे, कभी छिप जाए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण अब तैयार हो जाओ, मारीच और सुबाहु अब यहाँ देखो, कभी दिखते हैं, कभी छिपते हैं, ये कि मैं पूरी बाधा डालेंगे, अपने को तैयार हो जाना चाहिए। अब इधर मारीच और सुबाहु ने देखा कि देखे कौन यज्ञ की रक्षा करते हैं, माया के द्वारा उन्होंने खून वहां पर बरसाना चालू किया। राम जी महाराज ने उनको देख लिया था, अतएव राम जी महाराज ने मन में विचार किया और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण देखो ये राक्षस, अब इनको मानवास्त्र से मैं घायल करता हूँ, इनको मारूंगा तो नहीं लेकिन एक बार निवृत्त कर देता हूँ। तो करिष्यामि न संदेहो नोत्सहे हन्तुमिति दिशान, मन में आती इनको मारने से क्या होगा, मारे नहीं इनको पाप कर्म से निवृत्त करें। अतः उन्होंने राम जी महाराज ने एक मानवास्त्र लिया और मानवास्त्र लेकर के और मारीच की छाती में वो बाण लगाया। उस बाण से वो गुलेटी खाते 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 आकाश में चिल्लाते 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 400 कोस की दूरी पर समुद्र के किनारे पहुंच गया और वहां जाकर के वो पड़ गया। वहां जाकर विचेतनम विघूर्णंतम, एकदम बेहोश हो गया और यो छटपटाने लगा, कोई वहां सुनने वाला नहीं, और उसके छाती में बाण बहुत पीड़ा दे रहा था, लेकिन वो वहां से तो भाग ही गया। राम जी महाराज ने कहा, देखो लक्ष्मण, ये एक काम मानवास्त्र से मैंने कर दिया है, परंतु इस मानवास्त्र से प्राणी मरता नहीं है, तो मैंने सुबह मैंने मारीच को मारा नहीं है, लेकिन और जितने राक्षस हैं ये सब मारने योग्य मालूम देते हैं, इनको अभी मारते हैं। ऐसा कहकर के भगवान ने एक अस्त्र लिया, आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र लेकर के और बाण जोर से छोड़ा, सुबाहु की छाती में लगा और वहां जाकर उसने अग्नि अग्नि पैदा कर दी और वो वहीं पर जल करके राख हो गया। अब बताओ बिना किसी दाह संस्कार के उसका दाह हो गया और वह वहीं पर मर गया। सब ऋषि मुनि बड़े आनंदित हो गए, साथ के राक्षस थे कई भग गए, एक को मार दिया और सब प्रकार से वो यज्ञ संपन्न हो गया। विश्वामित्र जी महाराज बड़े खुश हो गए और जब उनका पूरा यज्ञ पूरा हो गया तब उन्होंने मौन खोल करके और उन्होंने दोनों राम और लक्ष्मण को अपने छाती से लगाते हुए कहा कि देखो बेटा राम, हम बहुत दिनों से यहाँ सिद्धाश्रम में आकर यज्ञ करना चाहते थे और हमारा इस सिद्धाश्रम से कोई लेना देना नहीं, हमने यहाँ पर अब यज्ञ पूरा कर लिया और इस यज्ञ के अंदर तुमने हमारी बड़ी सहायता की, बड़ी अच्छी बात है, अब अपना काम पूरा हो गया। ये बात रात भर उनकी होती रही। अब भाई ठीक है, काम तो पूरा हो गया, कल अपने अयोध्या चलेंगे। प्रातःकाल हुआ, विश्वामित्र जी महाराज और ऋषि मुनि सब बड़े प्रसन्न हुए और फिर भाई विश्वामित्र जी महाराज बैठे हुए थे, ऋषि मुनि बैठे हुए थे, तो दोनों ने जाकर प्रणाम किया और प्रणाम करके और कहा कि महाराज अब और आगे हमारे लिए क्या आज्ञा है, अब आप हमें जो आज्ञा दें वो काम करने के लिए हम तैयार हैं, क्या आज्ञा है आपकी। तब वो और ऋषि मुनि बैठे हुए थे, उनका विश्वामित्र जी इनको वापस अयोध्या क्यों भेजे, अपना काम हो गया अयोध्या नहीं भेजे, एक एक इन लोगों को बतावे तो सही। एक धनुष पड़ा हुआ है जनक जी के यहाँ पर, वो धनुष इनको भी बताना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, विश्वामित्र जी ने कहा रे तुमको जब हमने इतने धनुष विद्या की शिक्षा दी है तो एक जनक जी के वहाँ पर धनुष पड़ा हुआ है और वो जनक जी के यहाँ धनुष है तो वहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, अभी उस यज्ञ में अपने लोग चलो और जनक से प्रार्थना करेंगे कि भाई तुम्हारे कोठार में जो वो धनुष पड़ा हुआ है वो धनुष इनको भी दिखा दो तो तुम भी धनुष देख लेना। देखो वो धनुष बड़ा विचित्र है, अप्रमेय बलम घोरम मखे परम भास्वरम, क्या बताएं उस धनुष को कोई उठा भी नहीं सकता है, उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाना तो देवताओं के लिए बड़ा मुश्किल है, गंधर्वों के लिए मुश्किल है, असुरों के लिए मुश्किल है, राक्षसों के लिए मुश्किल है, तो फिर मनुष्य तो बेचारे चढ़ा भी क्या सकते हैं। तो भाई जो है तुम कम से कम देख तो आओ, एक देखने लायक चीज है और वहाँ यज्ञ हो रहा है, जा तो अपन यज्ञ में रहे और वहाँ यज्ञ में जाकर के धनुष को भी देख लेंगे। और देखो एक बलवान पुरुष के द्वारा यदि वो ये धनुष नहीं देखा गया तो काम अधूरा रह जाएगा, कि बहुत अच्छी बात है। राम जी महाराज ने स्वीकार कर लिया और वहां से वे सिद्धाश्रम से रवाना हुए। रवाना होते होते विश्वामित्र जी महाराज ने कहा स्वस्ति वोस्तु गमिष्यामि सिद्ध सिद्धाश्रमादम। देखो इस सिद्धाश्रम से हम जा रहे हैं, इस सिद्धाश्रम में हमने तपस्या की, यहाँ हमने यज्ञ किया, वो सब हमारा फलीभूत हो गया, इसलिए मैं यहाँ सबको कल्याण का आशीर्वाद देता हूँ और अब मैं यहाँ से फिर हिमालय की ओर जाऊंगा, वहां जाकर शेष जीवन में तपस्या करूंगा। विश्वामित्र जी महाराज इतना कहकर के वहां से रवाना हो गए और साथ साथ में कई बैलगाड़ियां भी विश्वामित्र जी के साथ में थी। उन बैलगाड़ियों में बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े जो संत थे, ऋषि थे, मुनि थे, भी चलो जनक जी महाराज के यहाँ यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में हम लोग चलेंगे। तो भाई सब सिद्धाश्रम वाले ऋषि मुनि साथ में हो गए और तब तक सूर्य जो है बहुत चमकने लग गए थे। फिर वहां विश्वामित्र जी महाराज राम जी को साथ में लेकर नदी के किनारे आए और वो एक देश को पार कर रहे थे। पूछा कि ये कौन सा देश है, कौन सा देश है, कहाँ चल रहे हैं, राम जी महाराज ने पूछा। तो फिर उस देश के विषय में बताते हुए विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी का एक बेटा था, उसका नाम था कुश। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बातें आती, बहुत अच्छी बात आएगी। कहते हैं वो कुश था ब्रह्मा जी का बेटा, खूब धर्म को तत्व को जानने वाला था। उस कुश के चार बेटा थे, कुशाम्बु, कुशनाब, असुरत रजस और वसु, ये चार बेटा थे। तो कुश ने उन चारों बेटों को चार राजधानी दे दी, चार जगह दे दी, तुम यहाँ शासन करो, तुम यहाँ शासन करो, तुम यहाँ करो, तुम यहाँ करो, चार उनको शासन दे दिए। तो कुशाम्बु ने जहाँ शासन किया वो कौशाम्बी कहलाई, कौशाम्बी नगरी, और असुरत रजस ने जहाँ शासन किया वो धर्मारण्य के नाम से नगर विख्यात हुआ, और वसु ने जहाँ रहा वो गिरिव्रज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें अनेक सुंदर सुंदर पर्वत हो जाने से इसका नाम गिरिव्रज नाम रखा। वहां पर मागधी नाम की बड़ी सुंदर नदी बहती है और बड़ी अच्छी वहां पर भूमि है और जो है बड़े श्रेष्ठ पुरुष है। अब मैं बताता हूं कि कुशनाब के 100 बेटियां थी। ये 100 बेटियां कैसे पैदा हुई, घृताची जो अप्सरा थी उससे पैदा हुई। अब यहां से थोड़ी बहुत सुंदर बात आएगी, शिक्षाप्रद बात हो। तो कुश नाम ने तपस्या की तो घृताची नाम की अप्सरा आई। उस अप्सरा से उसके 100 लड़कियां पैदा हुई। 100 लड़कियां बड़ी सुंदर थी, रूपवती थी और बहुत अच्छा अलंकार पहनी हुई थी, वस्त्र अच्छे पहने हुए और आभूषण भी अच्छे पहने हुए थे। अब वो 100 कन्याएं बगीचे के अंदर आपस में बोल रही थी, हंस रही थी, क्योंकि कन्याओं का अपना अलग बगीचा होता है राजाओं के यहाँ अंतःपुर में। वहां पर वो खेल रही थी और जो है आपस में बातचीत कर रही थी। और बरसात का समय था, वहां पर वे गा भी रही थी, नाच भी रही थी, आमोद प्रमोद कर रही थी। तो उनकी ऐसी शोभा हो रही थी जैसे आकाश के अंदर तारों की शोभा होती है। उन सबको देख करके वायु देवता ने एक बात कही। वायु देवता खुद वहां आ गया। वायु देवता ने कहा कि राजकुमारियों, मैं देवता हूं, तुम मेरे साथ विवाह कर लो तो तुम भी देवता हो जाओगी। ये मनुष्य के अंदर जो नियम उपनियम धर्म ये यहां पर बहुत पालने पड़ते हैं। हमारे यहां देवताओं में कोई नियम नहीं, हमारे देवताओं में कोई मर्यादा नहीं, हमारे देवताओं में कोई धर्म बंधन नहीं। ये मनुष्य शरीर में तुमको बहुत बंधन देखना पड़ता है। तो मेरी तुमसे यही बात कहनी है कि मानुषस्य त्यज्यताम भावः, ये मानुष भाव का त्याग करो, मेरे साथ तुम आ जाओ, तुम मेरी पत्नियां बन जाओ, मेरे साथ तुम स्वर्ग में रहोगी, तुमको वहां पर दीर्घायु मिलेगा, दीर्घायु मिलेगी, खूब धन मिलेगा, खूब तुम्हारा उत्कर्ष होगा। और देखो देवताओं के अंदर जो स्त्रियां होती है उनका यौवन सदा स्थिर रहता है और मनुष्य शरीर में रहने वाली स्त्रियों का यौवन चलायमान होता है। तो हमारे साथ में रहोगी, तुम्हारा अक्षय यौवन बना रहेगा, अक्षय धन बना रहेगा, सब प्रकार से तुमको जो है सुख सुविधा मिलती रहेगी। इस प्रकार से वायु ने उनको कहा। उस बात को सुनकर के उन कन्याओं ने जो बात कही है बहुत विचित्र बात। वायु देवता, आप सब लोगों को जिलाने वाले हो, सबके प्राणों में आप निवास करते हो, प्राण रूप से आप ही तो हो, सबके हृदय में रहने वाले हो। हम आपके प्रभाव को जानते हैं कि आप क्या नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप एक कन्या वर्ग से जिसका कभी विवाह अभी हुआ नहीं है उसको आप विवाह के लिए प्रस्ताव रखते हो, ये बात आपकी उचित नहीं है। यदि हमारे साथ आपको विवाह करना है तो आपको जाकर हमारे पिता से बात करनी चाहिए। हम कन्या हैं, हमारा पालन पोषण हमारे माता पिता ने किया है, माता पिता हम लोगों का दान करके बहुत बड़ा धर्म कमाने वाले हैं, क्या हम हमारे माता पिता को धर्म से वंचित करके हमारी मर्जी से, चूंकि आप बहुत बड़े देवता हो, चूंकि आपके पास बड़ा धन है, चूंकि आपके पास बड़ी शक्ति है, चूंकि आपके पास में बड़ा यौवन ऐश्वर्य सब कुछ है, केवल उतने में आकर हमारे धर्मात्मा माता पिता को छोड़ करें और उनसे बिना पूछे हम तुमसे विवाह कर ले, ये बिल्कुल अनुचित बात है। स्थानात् चावयितु देवं रक्षामस्तु तपो वयम्। देखो आप चाहे कुछ भी कहो, हम हमारे पिता की तपस्या की रक्षा करना चाहते हैं। ऐसा दिन कभी नहीं आना चाहिए किसी भी कन्या के लिए। माभूत सकालो दुर्भेद पितरम सत्यवादिनम, कि जब पिता स्वयं कन्या दान देवे और पिता ये सोचे कि मैंने बहुत बड़े धर्म का पालन किया, वो दिन तो आना चाहिए, पर ये दिन नहीं आना चाहिए कि पिता को तो वो मौका ही न मिले और कन्या अपने आप ही किसी पति का वरण कर ले। यदि वो दिन आएगा तो फिर पिता कब धर्म करेंगे। अवमान्य स्वधर्मेण स्वयं वरम उपास में है, बहुत अपमान का वो दिन होगा, हम स्वयं वर करेंगे, अपने आप ही अपने पति को जो है स्वीकार कर लेंगे। देखिए पिता ही प्रभु रस्माकम, हमारे पिता हमारे स्वामी है, हमारे लिए परम देवता है, वो जिनके हाथ में देंगे, चाहे वो कितना ही गया गुजरा आदमी हो, चाहे वो कैसा भी हो, कंगला हो, मंगता हो, कैसा भी हो, पिता जिसको दे देंगे उसके पास में हम जाएंगे और वही हमारा स्वामी होगा, वही हमारा पति होगा। आप हमारे सुंदर यौवन पर मुग्ध होकर आप ऐसी अटपटी बात करते हो, आपके मुंह से बात अच्छी नहीं लगती। ये बात सुनकर के वायु देवता को बड़ा क्रोध आया, अच्छा तुम पिता के बड़े भक्त बनना चाहती हो, तो अब देखो तुमने हमारी बात का मना किया, तो हम देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। सोच लो हमने तुमको समय दिया है, नहीं तो हम तुमको जीने नहीं देंगे, हम तुम्हारा जीना भारी कर देंगे। कहा कुछ भी कर दिया, मारे मर जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। कह नहीं हम मारेंगे भी नहीं, लेकिन आपका जीना दुष्कर कर देंगे। कर दीजिए, हम हमारे पिता को धर्म से गिरने नहीं देंगे। वायु देवता भीतर में तो एक बार डर गया कि देखो इन कन्याओं के पास में कैसी शक्ति है। पर वायु देवता ने एक काम किया, वायु देवता ने उनके शरीर को एकदम टेढ़ा मेढ़ा बना दिया और उनके शरीर को कुबड़ा बना दिया। सब बिचारी टेढ़ी मेढ़ी हो गई एक क्षण में। वायु देवता ने कहा क्यों तुम ऐसे सुंदर रूप के ऊपर घमंड करती थी ना, अब देख लो तुम्हारा रूप। कोई बात नहीं, कन्या का बाहर का रूप मत देखो वायु देवता, भीतर का रूप देखो। हमारा भीतर का रूप यही है कि जहाँ पिता देंगे वहां हम जाएंगे। अब पिता किसको देंगे भाई, और कौन तुमको स्वीकार करेगा। कोई बात नहीं, स्वीकार करेंगे तो हम ऐसी अवस्था में पड़े रहेंगे। अब वे कन्या बिचारी फिर अपने बगीचे से पिताजी के पास में गए। पिताजी ने कहा किमिदम क्या हुआ बेटियों, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, किसने किया, तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई। तब उन्होंने सारी बात बताई। सारी बात बता करके कहा कि वायु देवता हमारे रूप के ऊपर मोहित हो गया और मोहित होकर वो हमसे विवाह करना चाहता था। वो विवाह भी नहीं, वो हमको सीधा ही स्वर्ग में ले जाना चाहता था, लेकिन हम इस अशुभ मार्ग को छोड़ करके हम अशुभ मार्ग को छोड़ दिए, हम इस धर्म के मार्ग को छोड़ नहीं सकते थे। हमने उनसे कहा कि देखो वायु देवता, हम पराधी नहीं, हमारे पिता जिनको हमें देंगे हम उनके हाथ में जाएंगे। यदि हम आपको ज्यादा पसंद आई है तो आप हमारे पिता के मन को प्रसन्न कर दीजिए, लेकिन आप हमसे पाप मत करवाइए। लेकिन वो वायु देवता माने नहीं और उन्होंने हमारे साथ में ऐसा बर्ताव कर दिया और हमको टेढ़ा मेढ़ा बना दिया। अब राजा ने कहा सोच करके कि बेटा जो अपने प्रति कोई खराब व्यवहार करता है उसके प्रति क्षमा का भाव रखो, क्षमा का शस्त्र कब काम आएगा, तुम क्षमा कर देना, नहीं तो तुम्हारी जैसी धर्म के अंदर रहने वाली कन्याओं का शाप बहुत भयंकर होगा। तुम अपने मन से भी वायु को शाप मत देना। क्षांतम क्षमावताम पुत्री है, मनुष्य की यही पहचान होती है कि भी कोई गलत काम कर दिया हमारे साथ फिर उसका प्रतिशोध लेना, उसका बदला लेना। नहीं नहीं, ये प्रतिशोध की भावना राक्षसों में होती है, ये हमारा धर्म नहीं है। स्त्रियों की जो खास अलंकार है, शोभा है, वो क्षमा करने में है। और पुरुष की भी इसी बात में शोभा है। पुरुष का और स्त्री का सौंदर्य ये मलमूत्र के शरीर का सौंदर्य नहीं होता, उसके गुणों का सौंदर्य असली सौंदर्य होता है। और सब गुणों में क्षमा रूप गुण है, सबसे ऊंचा गुण है। क्षमा दानम क्षमा सत्यम क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिका। बेटा सबसे बड़ा दान क्या है, क्षमा कर देना। सबसे बड़ा सत्य क्या है, क्षमा करना। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, क्षमा कर देना। सबसे बड़ा धर्म क्या है, यश क्या है, क्षमा कर देना। ये क्षमा के अंदर सारा संसार टिका हुआ है बेटियों। आज यदि भगवान क्षमा न करते तो ये संसार, इस संसार में प्राणी अपने कर्मों के अनुसार तो कभी कभी भी वो सुख पा ही नहीं सकता था, लेकिन भगवान सबके ऊपर क्षमा रखते हैं। ये क्षमा भगवान का गुण है। तुम जाओ, अब आगे का काम मैं देखूं, मेरा काम देखे। सबको विसर्जित कर दिया। विसर्जित करने के बाद अब एक बार की बात है, इधर क्या हुआ, राजा के मन में थोड़ी चिंता हुई कि मेरी बेटी को कौन स्वीकार करेगा। शरीर से टेढ़ी मेढ़ी हो गई, पैर से भी टेढ़ी हो गई, हाथों से भी टेढ़ी हो गई, और गर्दन से भी टेढ़ी हो गई, छाती से भी टेढ़ी हो गई, कौन इनको स्वीकार करेगा। मन में विचार किया, अब जो होना है सो होगा, और तो क्या करें। लेकिन धर्म इन्होंने नहीं छोड़ा है, तो धर्म हमको भी नहीं छोड़ना है। राजा कृष्णा धर्म के ऊपर रहा। उन दिनों में बात है, एक चूली नाम का ऋषि था, बड़ा ऊर्ध्व रहता था। उसने तपस्या की। तपस्या में सोमदा नाम की एक अप्सरा थी, वो सेवा में आए। ध्यान देना, वो सेवा में